आज से लगभग 2 साल पहले जनूबी अमेरिका से उठने वाले जीका वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ व हिरास फैलाया था। आसिम भट्टी यहाँ डेकन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है इस बारे में उसकी तफसील खुद उन्हीं से सुनते हैं।
आसिम भट्टी नाम है मेरा और पोजीशन मेरी एसोसिएट प्रोफेसर है और ये कि मैं न्यूरो इंजीनियरिंग की फील्ड डेकन में लीड करता हूँ।
आसिम भट्टी ने जीका वायरस फैलाने वाले मच्छर के दिमागी खलियों पर तहकीक करके इस मर्ज के इलाज के लिए नई राहें खोली हैं। तो आसिम, ये नया रिसर्च क्या है और इससे क्या पता चला है?
ये रिसर्च ये है बेसिकली के अभी तक तो बेसिकली वही आप ब्रेन के अंदर आप डिफरेंट प्रोटीन वगैरह डालते हैं, डिफरेंट केमिकल्स डाल के फिर आप रिएक्शन देखते हैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे के फिजिकली क्या चेंजेस आई हैं। हम क्या करते हैं कि हम मच्छर के दिमाग से सेल ले लेते हैं और फिर मैमल जिस तरह माउस होता है जो कि इंसान और सारे मैमल्स में आ जाते हैं उनके दिमाग से हम सेल निकाल लेते हैं और एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रेन ऑन ए चिप जनरली हम उसे कहते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली हम सेल उसके ऊपर रख के उनको ग्रो करते हैं, उनको लिविंग कंडीशन देते हैं जिससे कि वो जिस तरह ब्रेन होता है उस तरह वो स्टेब्लिश हो जाते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं सेल आपस में जो कि ब्रेन का आप छोटा हिस्सा कह लें। तो चूंकि वो चिप के ऊपर होते हैं लिहाजा उनकी जितनी फंक्शनैलिटीज होती है जितनी उनकी कम्युनिकेशन आपस में हो रही होती है जिस तरह ब्रेन करता है वो हम सारी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, हम सारी रिकॉर्ड करते हैं रियल टाइम में। तो फिर जो कि हम इसको फर्दर हम क्या करते हैं कि उसमें हम डिफरेंट वायरसेस डालते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस हमने जीका वायरस का किया कि जीका वायरस में डाला फिर हमने उसका रिएक्शन देखा ब्रेन का कि ब्रेन कैसे इसको हैंडल कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, उसका इफेक्ट ब्रेन के ऊपर क्या आ रहा है। तो जीका जो हमने जो एक्साइटिंग चीज हमें मिली कि पहले 3 से 4 दिन तक रिएक्शन ब्रेन मैमल हो या मॉस्किटो हो दोनों का बड़ा सिमिलर रिएक्शन आया कि हम उसे कहते हैं एक्साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन की इंट्रैक्शन है या ब्रेन की जो सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं 3 दिन और इंक्रीजिंगली ओवर एक्टिव होते जाते हैं। 3 से 4 दिन तक वो काफी हाइपर एक्टिव जिसे आप कह लेंगे ओवर कमिटमेंट उनकी शो हो रही होती है कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। उसके बाद डिफरेंस शो होता है कि जो मच्छर के अंदर का मच्छर का दिमाग है वो somehow 3-4 दिन के बाद वो ओवर एक्साइटमेंट जो है उसको कॉम्पनसेट कर लेता है बाय रिलीजिंग डिफरेंट केमिकल्स इन द ब्रेन जो कि उसके अंदर में नेचुरल मैकेनिज्म है। इन कंट्रास्ट वो मैमल में क्या होता है जो कि हमने सबने खबरें सुनी है कि बच्चे जो बॉर्न हो रहे हैं वो सबसेट ऑफ द ब्रेन के साथ बॉर्न हो रहे हैं मीन के छोटे दिमाग के साथ। तो मैमल में क्या होता है कि उसका रिएक्शन क्या आता है कि वो सेल मरना शुरू हो जाता है और आप नेक्स्ट अप टू 7 डेज आप उसका सिग्निफिकेंट देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फॉल डाउन आता है कि अच्छा पोर्शन जो ब्रेन का है ना वो डेड हो चुका होता है मैमल में जो कि मॉस्किटो में थोड़ा सा डेड होता है मगर ये कि वो somehow जिस तरह मैंने कहा है कि वो नेचुरल मैकेनिज्म किक इन होता है जो कि उसको कॉम्पनसेट कर देता है और मच्छर ऑफकोर्स लाइव हो जाता है।
ये जीका वायरस क्या किसी खास किस्म के एक मच्छर से फैलता है?
इसका स्प्रेड जो है ना वो आपके पास बिल्कुल ठीक है वो खास एक मच्छर है वही मच्छर है जो डेंगू फैला रहा है मलेरिया भी मेरे ख्याल में यही कह रही करता है। ये खास स्पीशी है मच्छरों की ना जो कि हाईली लाइकली मेरे ख्याल रेजिस्टेंट है सारे मच्छर कह रही नहीं करते और ये तो ये जो है जीका है जिस तरह डेंगू और जीका ये बड़ी हाईली लाइकली दिमाग को इफेक्ट करते हैं इनको हम कहते हैं न्यूरोट्रॉपिक वायरसेस। सारे वायरस भी ये नहीं करते तो जीका जरा स्पेशल वायरस है और इज कैरिड बाय द सेम मॉस्किटो एज डेंगू एंड अदर मेन वायरस।
इंसानों के लिए और खासतौर पर बच्चों के लिए मोहलिक होने की खबर थी और ब्राजील में तो प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करने की एडवाइस दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। कितना खतरनाक वायरस था जरा इसकी वजाहत ये कीजिए कि इंसानों को और बच्चों को इससे कितने खतरात लाहक।
ये जो जीका है ना जो ग्रोन अप्स लोग हैं जैसे हम और आप हो गए ये उनके दिमाग को इतना इफेक्ट नहीं करता मतलब मैच्योर ब्रेन को। जो एम्ब्रियोनिक बेबीज होते हैं ना जिस तरह बेबी बॉर्न हो रहा है या प्रेगनेंसी के अंदर है वो जो दिमाग होता है ना बड़ा सेंसिटिव है वो जीका वायरस उनको ज्यादा अटैक करता है। तो लिहाजा अगर जिस तरह प्रेगनेंट वुमेन है और बेबी है उनके कह लो कि प्रेगनेंसी के प्रोसेस में चल रहा है वो जो स्टार्टिंग प्रोसेस है ना दिमाग का जिसमें जिसको हम कह लो न्यूरोजेनेसिस टाइप प्रोसेस कहते हैं जिसमें नए सेल्स बन रहे होते हैं उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये 3-4 साल की ओवर एक्साइटमेंट के बाद में भी आप कह सकते हैं जो कि ब्रेन नया होता है शायद वो हैंडल करना नहीं चाहता नहीं जानता इस एक्साइटमेंट को तो वो सिग्निफिकेंट डैमेज करता है। और सिग्निफिकेंट डैमेज से मुराद अगर आपका कह लो कि दिमाग का व्हाटएवर 70-60% अगर हिस्सा आपका डेड है तो आपकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें हाई लाइकली है कि वो आपका एम्ब्रियो या बच्चा वो डेड भी हो सकता है अगर सामा वो सर्वाइव कर गया है तो वो एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड ब्रेन फंक्शनैलिटी के साथ सर्वाइव करेगा तो ये काफी डेंजरस चीज है।
यानी पैदा होने वाले बच्चों में दिमागी माजूरी के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जीका वायरस से मुतासर होने के बाद।
हाँ जी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका दिमाग बड़ा छोटा सा दिमाग रह जाता है, क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टैंडर्ड या रेगुलर फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
आपका जो रिसर्च है वो कितना सिग्निफिकेंट है, जो अभी तक जिस तरह का रिसर्च चल रहा था जीका वायरस के साइंटिस्ट और रिसर्चर जिस डायरेक्शन में काम कर रहे थे, आपका काम उससे कितना मुख्तलिफ है?
करंटली ना फोकस ज्यादातर था मैमल्स पे, कि मैमल्स के अंदर आपने जीका अगर आपने डाला है तो वो क्या रिएक्ट किस तरह कर रहा है, तो उसकी कुछ वैक्सीनेशन जो है ना वो डिफरेंट कंपनी ने बनाई भी हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल ट्रायल्स के लेवल पे नहीं गई क्योंकि वो एफडीए अप्रूवल नहीं मिली हमें। हमने क्या किया कि हमने वो कहने ना एक स्टेप बैक ही किया है, और हमने बनिस्पत के मैमल्स में उसके रिएक्शन देखे, हमने देखा कि अगर अगर जो मच्छर है वो सामा उसको कॉम्पनसेट कर रहा है तो कौन से मैकेनिज्म है मच्छर के अंदर जो उसको हैंडल कर रहे हैं, और आइडिया यही है कि अगर हम समझ जाएं उन मैकेनिज्म्स को कि जो मच्छर जिस तरह से कॉम्पनसेट कर रहा है वो कौन से केमिकल रिएक्शन है जो मच्छर या वो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मच्छर जो उसको समहाउ कॉम्पनसेट कर रहे हैं, उसको हम अगर रेप्लिकेट कर पाए मैमल्स के अंदर तो ये बड़ा कह लो एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा जीका को कह लो कंट्रोल करने का। और हमने दूसरा अहम पहलू जो हमने कोशिश की है वो ये कि अभी तक रिसर्च ज्यादातर जो है ना वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे हैं, कि आप जब मच्छर जाता है तो फिजिकली सेल के अंदर क्या होता है और उसके लिमिटेशन क्या है, कि आपको सेल जब डेथ होती है वो तो आपको पता चल जाता है मगर किस प्रोसेस से गुजर के वो कह लो डेथ का लेवल आया वो नहीं पता चलता। हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसकी फंक्शनैलिटी भी देख पाते हैं कि आज अगर आपने वायरस इन्फेक्शन किया है तो सेल किस प्रोसेस से गुजरा है वहां तक पहुंचने तक जब आपको डेथ हुई है, तो मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैक्सीनेशन में। जैसे मैंने कहा कि 3 दिन तक एक्साइटमेंट चलती रहती है, अगर आप वैक्सीनेशन लेट से स्टैंडर्ड उसका जो इनएक्टिव ब्रेन है वो डाल दें अगर आप वायरस, अगर वो भी यही कंडक्ट करे एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी तो फिर भी वो डैमेज करेगी वैक्सीन। तो ये जो मैकेनिज्म हम मच्छर की तरफ से अगर हमने जो कोशिश की ना आने की, ये बड़ा ही यूनिक एस्पेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो हम मॉनिटर करते ही हैं, हम उसकी फंक्शनल एस्पेक्ट के भी देख रहे होते हैं कि कैसे वहां तक पहुंच रहा है वो। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा यूनिक पहलू है जो हमारी हमारी रिसर्च से पहलों में नजर आया है।
मेरे ख्याल में आपके रिसर्च को एक ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है जीका वायरस के इलाज के सिलसिले में, जो वैक्सीन पे काम हो सकता है उस डायरेक्शन में। कितना अरसा आपको लगा है इस रिसर्च में और आपके साथ क्या और भी टीम मेंबर्स हैं?
ओवरऑल मैं कहूंगा कि 4 से 5 इयर्स से हम इन्वॉल्व हैं प्योर जीका वायरस की रिसर्च पे, और मेरे बल्कि मैं एक्नॉलेज भी कर जाऊँ मेरे कोलैबोरेटर्स हैं, जिलोंग के अंदर है ऑस्ट्रेलियन एनिमल हेल्थ लेबोरेटरी ये कि CSIRO की गवर्नमेंट फैसिलिटी है, तो वहाँ के रिसर्चर्स मेरे साथ शामिल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में मेरी PhD स्टूडेंट एक हैं मिस जूली गुबारो, शी हैज स्पेंड मेरे ख्याल में 3 से 3.5 इयर्स इन कंडक्टिंग ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट एक्सट्रीमली क्रिटिकल होते हैं, जैसे कह लो कि आप कह लो कि प्रोसेस करते हैं एनालाइज करते हैं डाटा को और सबको, जिससे कह लो फाइंडिंग हमारी ये निकली है, तो ये लोग बड़े ही इम्पोर्टेंट है इस ओवरऑल रिसर्च में।
यहाँ रहने वालों को आप कोई लीड बात कहना चाहेंगे जीका वायरस के रिसर्च के हवाले से?
अभी लकीली बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया में ना अभी हम कम से कम हिट नहीं हुए वायरस है ना, मैं समझ क्लोजेस्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो पापुआ न्यू गिनी में किया है, तो उम्मीद तो है कि कुछ ऐसा और तो शायद हमें वो सफरिंग में जाना ना पड़ेगा जीका वाली है, तो उम्मीद है कि जब तक ये टाइम आएगा हम उस टाइम तक वैक्सीनेशन बना चुके होंगे। और क्लोजेस्ट में हम पापुआ न्यू गिनी में 1-2 केसेस आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1-2 मेरे ख्याल केसेस थे मगर वही थे जो ट्रेवलिंग, ऑस्ट्रेलिया इज अ सेफ प्लेस एंड आई होप के सेफ रहेगी जब तक हम क्योर नहीं निकाल लेते इसका।
क्या ख्याल है कि इसका वैक्सीन बनते कितना टाइम लग जाएगा?
प्रोसेस इस तरह मैंने कहा कुछ कंपनीज ऑलरेडी क्लेम कर रही हैं इनके पास कुछ हैं मगर वो FDA अप्रूवल नहीं उन्हें मिल रही क्योंकि वही वो सेफ्टी उस लेवल की नहीं है, तो उम्मीद तो यही है कि अगले मेरे ख्याल में 2 से 3 साल तक उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ आ जाएगा मार्केट में। May not be as effective as it should be, but something to really
help. आपके रिसर्च में उन ममालिक की और उन खित्तों की तरफ आपके रिसर्च को देखा जा रहा होगा गौर से, जहां इस बीमारी ने जीका वायरस ने ज्यादा मोहलिक किरदार अदा किया है, लोगों की जानें मुतासिर हुई हैं, तो क्या आपसे कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है बैरूनी ममालिक से आपके रिसर्च में दिलचस्पी जाहिर की है?
ओवरऑल जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज है ना दुनिया में और साउथ अमेरिका अफ्रीका वगैरह ये हार्डली हिट है जीका से ना, जिस तरह मैं समझ साउथ एशिया भी इसमें शामिल हो जाता है, तो मेरी कोलैबोरेशन में ऑलरेडी कोलैबोरेशन मेरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मायो क्लिनिक जॉर्जिया टेक US में ऑलरेडी चल रही है मेरी, तो उसमें वही है कि डिफरेंट चीजें हम लोग देख रहे हैं जीका के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हम देख रहे हैं, तो उस सेंस में जी कोलैबोरेशन मेरी चल रही है काफी ना, सच उस लेवल पे हम शायद नहीं है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें अप्रोच करें वैक्सीनेशन के मुताबिक, मगर ये कि लर्निंग जो है ना काफी सिग्निफिकेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में।
जिका वायरस जिसने दुनिया भर में खौफ व हिरास फैलाया और साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात में मसरूफ थे ताकि इसकी वैक्सीन या दवा बनाई जा सके, इसी पर ऑस्ट्रेलियन डीकन यूनिवर्सिटी विक्टोरिया के आसिम भट्टी लीडिंग रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्हीं से आप जिका वायरस के इस नई तहकीक के बारे में सुन रहे थे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं।